Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare,
Hare
Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare,
Hare Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare,
Hare
Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare,
Hare Krishna Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare,
Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare,
Hare Krishna Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama,
Hare Hare,
Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare,
Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare,
Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare,
Radha Gopinath Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe,
Gopinath Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe,
Radha Gopinath Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe,
Radha Gopinath, Radha Gopinath, Radha Gopinath Radhe.
Jay Shri Nath Ji, Shri Nath Ji, Shri Nath Ji, Jay Gopal Ji.
Jay Shri Nath Ji, Shri Nath Ji, Shri Nath Ji, Jay Gopal Ji.
Jay Shri Nath Ji, Shri Nath Ji, Shri Nath Ji, Jay Gopal Ji.
Shri Nath Ji, Shri Nath Ji, Jay Gopal Ji.
Ha Gaura Nitai, Jay Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jay Gaura Nitai,
Jay Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jay Gaura Nitai.
Gaura Nitai, Jay Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jay Gaura Nitai,
Gaura Nitai, Jay Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jay Gaura Nitai.
Prabhupada, 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 Srila Prabhupada,
Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada,
Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada,
Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada,
Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada,
Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada,
Nitai Gaura Hari Mo, Hari bol, Hari bol,
Nitai Gaura Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol.
Shri Radha Gopinath Bhagwan ki, Shri Nath Ji Gopal Ji ki, Shri Gaur Nitai ki, Shri Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanande. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Pashat Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Shri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, राम राम हरे हरे हरे।
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः।
हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित 5 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता कोर्स में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सबका परम सौभाग्य है कि श्रीमद् भगवद गीता जो संसार के जीवों को सुख प्रदान करने वाली है, ऐसी भगवद गीता का श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। शास्त्रों में कहा गया है संसार सागर घोई। यह संसार जो है सागर के समान है, समुद्र के समान। अनेक आचार्य भी इसका वर्णन करते हैं, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, संसार दावा नल लीढ़ लोक, चाहे ठाकुर भक्ति विनोद, संसार दावा नले दिया निशिहिया जले। ये संसार समुद्र के समान है, जैसे समुद्र में पानी ही पानी होता है वैसे इस संसार में दुख ही दुख है। समुद्र में पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है, वैसे ही संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है। सब लोग दुखी हैं और इस दुख रूपी सागर में गोता खा रहे हैं, डूब रहे हैं। विचार करो भक्तों, आप समुद्र में डूब रहे हो, महासागर में आप फंस गए हो, परंतु डूबते डूबते यदि आपके हाथ में नौका लग जाए तब क्या होगा? ठीक उसी प्रकार हम लोग इस संसार रूपी सागर में, जो दुख रूपी सागर है, इसमें डूब रहे हैं, परंतु डूबते डूबते मनुष्य जीवन रूपी नौका हमें प्राप्त हो गई है। संसार सागर घोई तत् इच्छामि यो नरह। ये संसार दुखों का समुद्र है, पदम पदम यत विपदा, कदम कदम पर दुख है, परंतु इस दुख रूपी संसार में भटकते भटकते भ्रमण करते करते यदि मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया तो वह मनुष्य इस दुख रूपी सागर को पार कर सकता है। कैसे? संसार सागर घोई तत् इच्छामि यो नर गीता नाव समारह्य पारम घोतु सुखे नचन। इस गीता रूपी ग्रंथ को नाव बनाकर उस पर सवार हो जाए तो वह निश्चित सुखमय सुखी होकर संसार सागर को पार कर सकता है। इस दुख रूपी संसार में भगवद गीता जो है नौका के समान है। भक्तों, इस संसार में भ्रमण करते करते भटकते भटकते एक ऐसे संत महान आचार्य प्रभुपाद जी की कृपा से हमें यह गीता रूपी नौका प्राप्त हुई है। तो आइए आज से हम इस गीता रूपी नौका में बैठकर सफर करेंगे। वैसे तो यह सफर बहुत दिनों का है, परंतु यहां पर केवल 5 दिन की यात्रा है। आप कभी गए हो क्रूज पे, बोट से, स्टीमर से, जहाज से सिंगापुर, मलेशिया इत्यादि जा सकते हैं, तो उसमें बहुत दिनों की यात्रा होती है। वैसे यहां पर हमारी 5 दिन की यात्रा है, जर्नी है, परंतु वह जर्नी तो सिंगापुर की होती है, मलेशिया की होती है, परंतु यहां कौन सी जर्नी है? द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार की जर्नी है, सफर है, यात्रा है। तो आइए इस यात्रा में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। समय बहुत बीत चुका है, हमारे पास केवल 1 घंटा है। वैसे तो भगवद गीता बहुत विशाल ग्रंथ है, इस भगवद गीता के 1 श्लोक के ऊपर पूरा जीवन बोला जा सकता है, परंतु भगवद गीता पढ़ने के लिए, समझने के लिए आज हमारे पास इतना समय नहीं है। इसलिए हमारे इस कोन में भगवद गीता को 5 भाग में बांटा गया है। भगवद गीता में मुख्य 5 विषय है, जैसे श्रीमद भागवत में 10 विषय है, अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उतय मन्वंतरेषानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। ये 10 विषय भागवत के हैं और 5 विषय भगवद गीता के। कौन से? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो ये 5 दिनों में हम 5 विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, इसके ऊपर कुछ अध्ययन करेंगे, जानेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये भगवद गीता कोर्स है, इट इज नॉट अ कथा, ये कोई कथा नहीं है, ये कोर्स है। कोर्स में जैसे आप स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हो, वैसे यहां पर आपको भगवद गीता पढ़ाया जाएगा। और वास्तव में हृदय से प्रसन्न हूं कि कुछ लोग बुक और पेन लेकर बैठे हैं हमारे सामने, क्योंकि जो बुक में लिख रहा है वो यहां कभी ना कभी आ जाएगा, और लिखते नहीं है तो प्राय यहां से जाता है, यहां से निकल जाता है। तो हमें पढ़ना है। 5 दिन के लिए आप स्टूडेंट बन जाइए, यू शुड बी अ स्टूडेंट, शिष्य बन जाइए। भले आप बहुत बड़े हो, हमसे बड़े हो, एक्चुअली हम तो आपके पुत्र के समान हैं, लेकिन आपने बिठाया है व्यास गादी के ऊपर, तो अभी ये पद तो स्वीकार करना होगा। तो एक शिष्य बनकर, स्टूडेंट बनकर यहां पर आपको सुनना है, और सुनने के बाद सबको क्वेश्चन आंसर का मौका दिया जाएगा। भगवद गीता में प्रश्न उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है, और स्पेशल इस कोर्स में जितना महत्वपूर्ण प्रवचन है उतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, इसलिए आपको यथा योग्य समय दिया जाएगा। तो मैं जो बोल रहा हूं, इस कोर्स के दरमियान आपके कुछ प्रश्न हो तो आप लिख लीजिए, जब आपको मौका दिया जाएगा तब आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो सब तैयार है? तब इसका सेल्फ मारू मैं यात्रा का है? हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
प्रायः यह आत्म अन्वेषण की यात्रा एक प्रश्न से शुरू होती है। तो मैं शुरू करने से पहले आप सबको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अब देखिए, जो लोग भगवद गीता कोर्स ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं वो आंसर मत दीजिए, बेचारे जो नए आए हैं उनको थोड़ा मौका दीजिए, पहले से मैं सतर्क कर रहा हूं। तो एक प्रश्न से शुरू किया जाएगा और वो प्रश्न ये है कि यहां पर भगवद गीता कोर्स डिसाइड हुआ करीबन 1-1.5 महीने पहले, ठीक है, और हमारे भक्तों ने बहुत एडवर्टाइजमेंट, बहुत प्रचार किया यहां लोगों को बुलाने के लिए और बहुत मात्रा में सब लोग आए भी। परंतु हुआ क्या कि हमारे भक्त लोग कई लोगों को प्रचार कर रहे हैं, करीबन 500 से 1000 लोगों को मिले होंगे, परंतु उस 1000 लोग में से यहां पर केवल 200 लोग आए हैं। हमारे भक्तों ने आपको जो बताया वही बात उन लोगों को भी बताई जो यहां पर नहीं आए हैं। ऐसा नहीं कि सबको कुछ अलग अलग बताया, सबको एक ही बात बताई, आपको जो बताया वह भी उनको बताया, परंतु वे लोग यहां पर नहीं आए और आप लोग यहां पर आए। तब हमारा प्रश्न यह है कि आप लोगों में ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपको खींचकर यहां पर लाई, और दूसरा उन लोगों में वह कौन सी वस्तु नहीं है जिसके कारण वे लोग यहां पर नहीं आए। प्रश्न समझ में आया? जैसे आपको बताया गया वैसे ही उनको बताया गया, तो वे लोग नहीं आए क्योंकि उसमें कुछ कमी है, और आप लोग आए क्योंकि उससे एक स्पेशल वस्तु आपके अंदर है जो आपको यहां पर खींच कर लाई। फिर से कहता हूं, जो लोग अटेंड कर चुके हैं वे हाथ ऊपर मत कीजिए, जो नए आए हैं यदि उनके पास उत्तर है तो हाथ ऊपर कीजिए। वहां से कोई? हाँ बताइए। प्रेम किसके प्रति? मेरे प्रति, भगवान के प्रति। ओके, प्रभु जी का कहना है भगवान के प्रति प्रेम है इसलिए आए हैं। तो मुझे तो लगता है मुंबई में भगवान के प्रति प्रेम मात्र 200 लोगों का ही होगा। उत्तर सही है लेकिन पूर्ण नहीं है। और कोई? हाँ बताइए। बहुत सुंदर आंसर है, भगवान को जानने की इच्छा। और कोई बता सकता है? अच्छा ओके, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी इसलिए हम लोग यहां पर आए। तो भगवान कृष्ण की इच्छा ये है कि 200 लोग यहां पर आए, बाकी के लोग मरे हैं? भगवान तो सर्वत्र समदर्शनम, सब मम प्रिय मम सब उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। भगवान का प्रेम सबके ऊपर बराबर है। कुछ मात्रा में ठीक है, पूर्ण नहीं है। और कोई? हाँ अच्छा, बहुत सुंदर उत्तर है। गीता समझने की कोशिश करनी है इसलिए आ रहे हैं। ओके, बहुत सुंदर आंसर और परफेक्ट आंसर। बोलिए आप। अच्छा, माता जी का कहना है पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार। आप तो कर्म का सिद्धांत जानते हैं, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार। परंतु पूर्व जन्म के कर्म जो है उसके फल स्वरूप हमको धन मिल सकता है, हमको अच्छा पति मिल सकता है, अच्छे पुत्र मिल सकते हैं, गाड़ी बंगला ये सब कुछ मिल सकता है। परंतु भक्ति जो है स्वतंत्र है, भक्ति कोई भी कर सकता है, भक्ति कर्म के अधीन नहीं है। तो यहां पर प्रभु जी ने, ये भी प्रभु जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया परफेक्ट, कि हम में जिज्ञासा है इसलिए यहां पर आए, और जो लोग नहीं आए उनमें जिज्ञासा नामक तत्व नहीं है। वास्तव में आप सबको यहां पर एक तत्व, एक वस्तु खींच कर लाई, और वह वस्तु है जिज्ञासा। कौन सी जिज्ञासा? कि चलो जाकर देखिए गीता क्या है, कृष्ण क्या है, इस्कॉन वाले क्या बोलते हैं, जानने की इच्छा, इसके कारण हम यहां पर आए। और जो नहीं आए हैं उनको जानने की जिज्ञासा नहीं है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, उनमें एक श्लोक में कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत पशुभेर नराणाम, बच्चे को बिठा दीजिए, आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चार प्रकार के कार्य पशु करते हैं। आहार का अर्थ क्या होता है? भोजन करना, पशु भोजन करते हैं। निद्रा का अर्थ होता है सोना, भय का अर्थ होता है डरना, और मैथुन का अर्थ होता है बच्चे पैदा करना। ये चार प्रकार के कार्य पशु करते हैं। तब देखा जाए तो यही चार कार्य मनुष्य भी करते हैं। मनुष्य आहार करते हैं, भोजन खाते हैं, सोते हैं निद्रा, भय किसी ना किसी से डरते हैं। हाँ देखिए, मनुष्य डरता है, कुछ लोग अपने टीचर से डरते हैं, तो कुछ लोग अपने ऑफिस के मालिक से डरते हैं, कुछ लोग अपनी पत्नी से डरते हैं, कुछ लोग अपने पति से डरते हैं, और किसी से न डरे तो मृत्यु से तो सब लोग डरते हैं। भय सबको है। तो मनुष्य भी आहार करते हैं, मनुष्य भी निद्रा करते हैं, मनुष्य भी डरते हैं और मनुष्य भी मैथुन करते हैं। अब बताइए मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत पशुभेर नराणाम। यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके मात्र यही करना है, आहार निद्रा भय मैथुन, तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन, कोई अंतर नहीं है। और तो कुछ लोग कह सकते हैं हम तो ऑफिस जाते हैं भाई, तो कुछ लोग कह सकते हैं हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, काम करते हैं, परंतु ये स्कूल में जाना, कॉलेज में जाना, ऑफिस में जाना, अल्टीमेटली आप देखा जाए तो स्कूल में क्यों जाते हैं? अच्छे से अच्छी नौकरी मिले। ऑफिस में क्यों जाते हैं? पैसा मिले। और ये पैसा लेकर क्या करेंगे? भोजन का खाएंगे या फ्लैट खरीदेंगे उसमें सोएंगे या विवाह करेंगे। मैथुनम, अल्टीमेट ये चार कार्य करने में मनुष्य समाज लगा हुआ है। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके यही करना है तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। परंतु महाभारत में आगे कहते हैं धर्मो ही एको अधिको विशेष, परंतु मनुष्य में भगवान ने एक वस्तु एक्स्ट्रा दी है पशुओं से, और वो है धर्म। वो है मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है, पशु धर्म का पालन नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है, पशु जिज्ञासा नहीं कर सकता है। आपको इतना अच्छा विचार आया, किसी कुत्ते को ऐसा विचार नहीं आया कि चलो जाकर देखें। पशुओं का ऐसा विचार नहीं आता है मनुष्य को, क्योंकि भगवान के द्वारा एक स्पेशल गिफ्ट है यह जिज्ञासा। धर्मो ही एको अधिको विशेष, धर्मेन विहीन पशुभेर समानाम। मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि हम जिज्ञासा नहीं करते हैं, धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं, तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं। केवल महाभारत ही नहीं, अन्य वेदों में भी कहा गया है येशान विद्यान तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिज्ञासा नहीं करते हैं, धर्म का पालन नहीं करते हैं, तो ते वह मनुष्य भूवि इस पृथ्वी पर भार है, बोझ है। हम कहते हैं ना कि ये पृथ्वी पर बोझ है, वास्तव में पृथ्वी पर बोझ वो है जो जिज्ञासा नहीं करते हैं, जो धर्म का पालन नहीं करते हैं। और इतना ही नहीं, मनुष्य रूपेण मृगार चरंती, वह दिखते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड, शूट बूट टाई पहनकर, परंतु मनुष्य के रूप में वह पशु है यदि वह जिज्ञासा नहीं करते हैं, यदि वह धर्म का पालन नहीं करते। आप देखिए, मुझे मत दोष दीजिएगा, ये वेदों के श्लोक का मात्र ट्रांसलेशन कर रहा हूं। ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगार चरंती। नहीं तो कुछ लोग कहेंगे प्रभु जी आकर डायरेक्ट शूट करने लगे हम पर, ऐसा नहीं है। बच्चे का कुछ कर दीजिएगा, एक जगह पर बिठाइए या अपनी माता के पास छोड़ दीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा
राम 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 हरे हरे।
तो जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा नामक तत्व मनुष्य में भगवान ने दिया है, परंतु जिज्ञासा में भी अच्छी जिज्ञासा होनी चाहिए। कुछ लोग जिज्ञासा करते हैं, परंतु कैसी जिज्ञासा करते हैं, यार अब तो होली की छुट्टी आ रही है, कहां पर घूमने जाए, लोनावाला जाए, महाबलेश्वर जाए, माथेरान जाए, ये भी एक जिज्ञासा है, ये भी जानने की इच्छा है। तो कुछ लोग विचार करते हैं कि यार आज संडे की छुट्टी है, कौन सा फिल्म लगा है, तो कुछ लोग जिज्ञासा करते हैं कि आज छुट्टी है, कौन सी होटल में जाएंगे, पिज्जा कहाँ अच्छा मिलता है, सीजलर कहाँ अच्छा मिलता है, ऐसी जिज्ञासा करते हैं। कुछ लोग जिज्ञासा करते हैं कि यार अब अच्छा जींस पैंट कहाँ मिलेगा, हम जानते हैं क्योंकि मैं भी इस जीवन से गुजर चुका हूं, शूज कहाँ अच्छा मिलेगा। हम लोग शूज लेने के लिए नेपाल जाते थे केवल, और क्रिकेट का बैट लेने के लिए नेपाल जाते थे, वहां पर मैन्युफैक्चर होता है। तो लोग ऐसी जिज्ञासा करते हैं, परंतु ये सही जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए, आध्यात्मिक जिज्ञासा। जैसे सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को जिज्ञासा की कि हे महाप्रभु, के आमी केने आमाय जार ताप त्रय, ये बंगाली में, बंगला में यह प्यार है, के आमी मैं कौन हूं, केने आमार जार ताप त्रय, मैं दुखी कौन हूं, तीनों ताप मुझे क्यों सता रहे हैं। जिज्ञासा होनी चाहिए। कैसी जिज्ञासा, सबसे पहली जिज्ञासा मनुष्य जीवन प्राप्त करके सबसे पहली जिज्ञासा होनी चाहिए, हु एम आई, मैं कौन हूं। अब देखिए, इस संसार के लोग पाकिस्तान के बारे में जानना चाहते हैं, दिल्ली के बारे में जानना चाहते हैं, न जाने यहां वहां के बारे में जानना चाहते हैं, परंतु अपने बारे में कोई जानना नहीं चाहता। पूछा जाए आप कौन हो, तो कहेंगे मैं अमरनाथ, परंतु वो अमरनाथ 50-100 साल में मर जाएंगे, तो मरने के बाद आप अमरनाथ रहे, गधे बन गए या बैल बन गए। तो ये अमरनाथ जो है हमारी वास्तविक पहचान नहीं है, ये तो टेम्पररी पहचान है। वास्तव में हम कौन है, हु एम आई, और यदि हम हमारे बारे में नहीं जानते हैं तो फिर उस व्यक्ति को पागल कहा जाएगा और क्या कहेंगे। एक बार हमारे इस्कॉन के प्रभु जी वृंदावन चंद्र प्रभु, उनका मित्र जो स्कूल में पढ़ता था, बड़ा होकर डॉक्टर बना, डॉक्टर तो बना परंतु दिल्ली के पागल खाने का डॉक्टर बना। तो एक दिन सोचा कि चलो अब दिल्ली का पागल खाना मशहूर है, मेंटल हॉस्पिटल आगरा में, तो वे गए और मित्र के साथ मिले और मिलकर हमारे प्रभु जी ने कहा मैं जरा हॉस्पिटल देखना चाहता हूं कैसी है। बहुत बड़ी हॉस्पिटल थी और डॉक्टर और हमारे प्रभु जी दोनों, अब डॉक्टर का व्हाइट कोट, प्रभु जी का व्हाइट कुर्ता, दोनों सफेद में अंदर प्रवेश किए तो सारे पागलों को जैसे जेल में बंद करके रखते हैं ना, वैसे बंद करके रखना पड़ता है, तो बंद करके रखा था। जैसे ही ये दोनों ने प्रवेश किया तो सारे पागल कान में कानाफूसी करने लगे। एक पागल दूसरों को कह रहा था, देखो ये दोनों पागल आ रहे हैं। पागलों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर पागल है, पागल जो होते हैं वो डॉक्टर को पागल कहते हैं, परंतु वास्तव में दोनों गए अंदर। गए तो हमारे प्रभु जी ने एक दृश्य देखा कि एक रूम में करीबन 25-30 पागल थे, तो उनमें जो बेड था उसके ऊपर एक बेड लगाया, उसके ऊपर जैसे ये दोनों टेबल है ना, ये दो टेबल, उसके ऊपर तीसरा, और तीसरे टेबल के ऊपर एक पागल बैठा था एक फाइल लेकर, और सबको नीचे बिठाया और भाषण दे रहा था। उसी समय हमारे प्रभु जी वहां से निकले तो कहा है, हमारे प्रभु जी तो डर गए, उसको बुलाया, कहा मैं जाऊंगा तो कान बान काट देगा, ये पागल का कोई भरोसा नहीं। तब डॉक्टर ने कहा नहीं ये काटने वाला पागल नहीं है, जरा जाओ क्या बोलता है। तो ये प्रभु जी गए और कहा आपका कान यहां पर लाओ, मैं कान में कहना चाहता हूं। प्रभु जी ने कान दिया तो पागल ने उसके कान में कहा देखो आई एम प्राइम मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, ये सब मेरी प्रजा है, तुम भी मेरी प्रजा हो, बैठो मैं भाषण कर रहा हूं जरा सुनो। प्रभु जी ने कहा मैं जरा मेरा काम करके आता हूं, आप प्राइम मिनिस्टर हो और मैं आपकी प्रजा हूं, मैं अभी आ रहा हूं, ऐसा करके वहां से निकल गए। ये सही घटना, परंतु इससे जानने क्या मिलता है, वास्तव में पागल किसे कहते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है परंतु अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कह रहा है तो पागल है, वास्तव में वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उनकी पहचान वास्तव में प्राइम मिनिस्टर नहीं परंतु वो अपनी गलत पहचान दे रहा है, पागल है। वैसे ही न तो हम किसी की पत्नी है, न पति है, न अमरनाथ है, न रमेश है, परंतु हम हमारी पहचान क्या देते हैं, हम ये हैं, ऑफिस के बॉस हैं, मालिक हैं, वास्तव में हम ये नहीं है। और यदि हम ऐसी पहचान देते हैं तो हम कौन है। देखिए आप मुझे दोष मत देना, आप ही बोल रहे हैं। नहीं तो कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी आते और हमको गधा और पागल करके कह के चले जाते हैं, परंतु फिर भी समझदार व्यक्ति उसे कहा जाता है जो तुरंत स्वीकार कर लेता है। तो कुछ लोग होते हैं मूड जैसे, हाँ ऐसे मुंडी हिलाते हैं परंतु स्वीकार नहीं करते हैं। एक बार मीरा रोड में मेरा भागवत कथा था तो मैंने इस हमारे गीता कोर्स में वो टॉपिक आएगा भगवान का टॉपिक, हु इज गॉड, भगवान कौन है। तो मैंने बहुत सारा प्रमाण दिया, वेद उपनिषद शास्त्र एक से एक प्रमाण। फिर मैंने प्रश्न पूछा, प्रवचन को रुका दिया कि कृष्ण ही भगवान है, आपको किसी को डाउट है तो खड़े होकर बोलिए। तो सब लोग कन्विंस हो गए, सब लोग महामंत्र बोले, सबकी मुंडी झुक गई और सब लोग ताली बजाकर प्रवचन के बाद बाहर निकल रहे थे। तो दो बुढ़िया थी वो आपस में बात कर रहे थे, ये लोग अपने संप्रदाय के भगवान का प्रशंसा करते हैं, हम तो जो मानते हैं वही करना है हमको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सुनना है और यदि वो ठीक लगे स्वीकार करना है, यदि ठीक नहीं लगे प्रश्न करो। और प्रश्न के बाद भी जब जिज्ञासा सोल हो जाती है तो उसे जीवन में धारण करो। तो सबसे पहली जिज्ञासा होनी चाहिए, हु एम आई, मैं कौन हूं। तत्पश्चात दूसरी जिज्ञासा होनी चाहिए, व्हाट इज गोल ऑफ माय लाइफ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। हम सब मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है हमें, तो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है बस पैसे कमाने के लिए, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है केवल घर का काम करने के लिए, क्या पढ़ने के लिए मनुष्य जीवन है, बस विवाह करके बच्चे पैदा करने के लिए मनुष्य जीवन है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। और जो व्यक्ति जीवन का लक्ष्य नहीं जानता है वो बुद्धिमान नहीं है। मानो आप ट्रेन से जा रहे हो और बाजू में कोई आपके बाजू में खड़ा है, आपने उसे पूछा आप कहां से आ रहे हो, मुझे पता नहीं, आप कहां जा रहे हो, मुझे पता नहीं, तब क्या कहोगे आप उसे, कहां से आया वो पता नहीं है, कहां जाना है वो पता नहीं है, मूर्ख कहेंगे, क्या कहेंगे, पागल है। ठीक उसी प्रकार हम कहां से आए हैं और मृत्यु के बाद हमें कहां जाना है, यदि हमें नहीं पता है तो शास्त्र उसे मूर्ख संज्ञा देता है, पागल कहते हैं। इसलिए हमें जानना चाहिए हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज गोल ऑफ माय लाइफ। और तीसरी जिज्ञासा जो हमारे हृदय के बहुत करीब है वह है व्हाई एम आई सफरिंग, मैं दुखी क्यों हूं। ये तो सब अनुभव कर चुके होंगे और कुछ लोग कर रहे होंगे, मैं दुखी क्यों हूं, इस संसार में सुखी होने के लिए न जाने क्या नहीं किया। अब देखिए एक दार्शनिक ने कहा है इस संसार में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उस कार्य के पीछे एक ही हेतु है, एक ही कारण है, वह है सुख। अल्टीमेटली सुखी होने के लिए ही कार्य कर रहे हैं। हजारों लोग विरार से चर्च गेट, चर्च गेट से विरार, किसी को उतार कर पूछिए क्यों इस प्रकार से लटकते जा रहे हो, सुखी होना है, कर सकते हैं, हम ऑफिस में जा रहे हैं पैसे कमाने, लेकिन अल्टीमेटली सुख चाहिए सबको। तो सुख प्राप्त करने के लिए जन्म से लेकर बूढ़ा हो गया, एक से एक प्रयास मेहनत, लेकिन वह सुख आज तक प्राप्त नहीं। आप देखिए किसी स्कूल के स्टूडेंट को पूछिए, बच्चे को कभी स्कूल में जाकर कि क्या आप सुखी हो, तो बच्चा कहेगा चड्डी पहनकर रोज आना पड़ता है और सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठना पड़ता है और आकर स्कूल का होमवर्क करना, ट्यूशन टीचर ट्यूशन का होमवर्क करना, खेलने को भी नहीं मिलता है, इतना रिस्ट्रिक्शन है। तब बच्चा कहता है कि फिलहाल एट प्रेजेंट मैं दुखी हूं, परंतु जब मैं कॉलेज में आ जाऊंगा, जब मैं कॉलेज में आ जाऊंगा सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि कॉलेज में बंक मारने का अवसर मिलेगा। ये हमारे जीवन में ये बीती हुई घटना है, कोई मैं कोई आकाश का हायर सिद्धांत नहीं बता रहा हूं, सरल बात है, हमारे जीवन की बात है। स्कूल वाला कहता है कि कॉलेज में आऊंगा तब सुखी हो जाऊंगा, 10 साल के बाद वह कॉलेज में आता है और फिर कुछ महीनों के बाद उसे पूछा जाए कि अब आप सुखी हो गए कॉलेज में आकर, तब वह कहेगा कि देखो मैं कॉलेज में तो आ गया हूं लेकिन मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, ना तो कोई गर्लफ्रेंड है ना बॉयफ्रेंड। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं है ना यार, ये बाजू वाला जो मेरी बाजू में बैठता है वह कार लेकर आता है, रिबोक का शूज पहनता है, राडो की घड़ी पहनता है, और हमारे पास पैसे नहीं, कोई सामने भी नहीं देखता है, इसलिए आज मैं सुखी नहीं हूं, जिस दिन पैसे आ जाएंगे उस दिन सुखी हो जाऊंगा। अब कॉलेज में आ गया तो कहता है कि जब पैसे आएंगे तब सुखी होऊंगा। अब 5 साल डिग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत, और 5 साल के बाद बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है और पैसे कमाने लगता है, फिर उसकी ऑफिस में जाकर पूछा जाए अब तो आपको पैसे मिलने लगे अब आप सुखी हो, तब कहेगा कि देखो मेरे पास पैसे की कमी नहीं है लेकिन सच्चा प्रेम करने वाला कोई नहीं है। जिस दिन घर पर पैसे लेकर नहीं जाता हूं तो घर पर कोई भोजन का भी नहीं पूछता है, और पैसे लेकर जाता हूं तो सब लोग वाह वाह करते हैं, प्रशंसा करते हैं, मेरे घर वाले मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, मेरे पैसे से प्रेम करते हैं। जिस दिन मुझे प्रेम करने वाली कोई मिल जाएगी उस दिन सुखी हो जाऊंगा, तब वो फ्यूचर प्लान में लग जाता है, फिर ढूंढता है मुझे प्रेम करने वाली कौन है संसार, तब अच्छी लड़की को ढूंढता है और फिर उसके साथ विवाह कर लेता है, और विवाह करने के बाद पूछा जाए कि अब आप सुखी हो गए, तो जहां तक मुझे लगता है तब तक आपको बताने की जरूरत नहीं, लगभग सबका विवाह हो चुका है और आप जानते हो विवाह करने के बाद कितना सुख है। विवाह करने के बाद तो वास्तविक दुख शुरू होता है, विवाह से पहले सब लोग सुखी होते हैं, हमारे पुरुष लोग शेर की तरह घूमते हैं, विवाह के बाद बेचारे चूहे बन जाते हैं। एक बार एक जंगल में, जंगल के राजा शेर का विवाह था, सिंह का विवाह था, और पूरा ऐलान कर दिया जंगल में कि आज मेरा विवाह है और मेरे विवाह में पूरे जंगल को आना है, सबको, हिरन को, खरगोश को, चूहे को, बिल्ली को, सबको। अब देखिए सिंह के विवाह में नहीं जाएंगे तो मार डालेगा सबको, इसलिए विवाह में तो जबरदस्ती न चाहते हुए भी जाना होगा। तो सिंह के विवाह में सब लोग जा रहे हैं, सब लोग, तो सब लोग जा रहे थे, उतने में एक बिल में एक चूहा बैठा था, और कई सारे चूहे जा रहे थे, देखा कि वो चूहा बिल में बैठा है, बारात में नहीं आ रहा है, तो बिल में जाकर कहा कि देखो चलो सिंह की बारात में, नहीं तो हमें खा जाएगा। आप जानते नहीं हो कितना खूंखार जानवर है वह, सिंह हमको खा जाएगा। तब उस चूहे ने कहा देखो एक दिन मैं भी सिंह था, एक दिन मैं भी सिंह था, लेकिन जिस दिन से विवाह हो गया उस दिन चूहा बनकर बिल में घुस गया हूं। सब का एक ना एक दिन होता है। बहुत बड़े राजा महाराजा पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, एक से एक राजा को हरा देते हैं, परंतु जैसे ही घर पर आते हैं तो अपना मुकुट अपनी पत्नी के चरणों में रख देते हैं। माय बाप, आप जो कहेंगे वही करेंगे। राजा दशरथ, दूर जाने की जरूरत नहीं, आज से 11 लाख वर्ष पूर्व त्रेता युग में राजा दशरथ, दशरथ का अर्थ होता है जिसका रथ दसों दिशा में चले, पर पराक्रमी सम्राट थे। देवता भी जब युद्ध करना होता था तो दशरथ का सहारा लेते थे, लेकिन वह दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी के चरणों में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुखी होने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। स्टूडेंट को स्कूल में पूछा जाए तब भी दुखी, कॉलेज में भी दुखी, विवाह करने के बाद भी दुखी, मरते दम तक दुखी। ये सुख कभी आता नहीं है। एक भक्त कहते हैं ये सुख जो है पोस्ट डेटेड चेक की तरह है। आप चेक देखे हो, उस चेक में अमाउंट लिख दिया है हैप्पीनेस, आपके जीवन में सुख आएगा, परंतु डेट नहीं लगाई है। बस हमारे मन में है कि हम सुखी हो जाएंगे, अब सुखी होंगे, अब होंगे, परंतु वो सुख आता नहीं। एक बार एक व्यक्ति ने किसी को 10 लाख रुपया उधार दिए, टर्म्स ड्यू पूर्ण होने के बाद फोन लगाया कि मैंने जो 10 लाख रुपए दिए थे मुझे वापस लौटाओ। तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, वैसे 3, 4, 5 महीने, 1 साल बीत गया। फिर तो वो उसके घर पर गया वसूली करने के लिए, मेरे 10 लाख रुपये दो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं कल दे दूंगा, अब कल आइए। उसने सोचा 1 साल से नहीं दिया, वह कल कैसे दे देगा। कहा प्रमाण क्या है कि तुम मुझे कल दे दोगे। कहा प्रमाण क्या, तो ठीक है दरवाजे के ऊपर लिख देता हूं कि मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगा। लिख दिया, वो अपने घर पर गया और घर पे जाकर दूसरे दिन आया, बेल बजाया, दरवाजा खोला और उसने कहा कि मेरे 10 लाख रुपये दो। उसने कहा दरवाजे पर पढ़ लो, मैं कल पैसे दे दूंगा। कल 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 मर गया, परंतु उसके जीवन में कल कभी नहीं आया, पैसे कभी नहीं आए। वैसे हमारे जीवन में होता है कि अब सुखी हो जाएंगे, कल सुखी हो जाएंगे, ये करने से सुखी हो जाएंगे, ये करने से सुखी हो जाएंगे, परंतु सुख कभी आता नहीं है। तो ये प्रश्न, ये जिज्ञासा होनी चाहिए, मैं दुखी क्यों हूं, दुखी क्यों हूं। और जैसे जैसे हम लोग सुखी होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जैसे जैसे सुख हमारे निकट आता है, हमको लगता है कि बस आ गया सुख, लेकिन दूर चला जाता है। जैसे वो धोबी का गधा, जानते हैं ना, एक धोबी था और धोबी को कपड़े धोने के लिए धोबी घाट पर जाना होता है तो गधे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गधा जो है बहुत मूर्ख प्राणी है। तो धोबी ने क्या किया, एक लकड़ी लिया, लकड़ी के आगे रस्सी बांधा और रस्सी के साथ एक गाजर को बांधा। अब गधे के ऊपर सामान रख दिया, लेकिन गधा चल नहीं रहा था। तब धोबी ने वह लकड़ी, रस्सी और गाजर, उस लकड़ी को गधे के सिर पर ऐसे लगा दिया और गाजर यहां लटक रहा था। गधा सोच रहा है थोड़ा चलूंगा तो वह गाजर मेरे मुख में आ जाएगा, लेकिन गधा जैसे जैसे चल रहा है वह गाजर वैसे वैसे दूर जा रहा है। तो सोचा कि अभी मुंह में आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, तब तक तो धोबी घाट आ गया। धोबी ने वह लकड़ी, रस्सी, गाजर ले लिया, अपने जेब में रख लिया, कपड़े उतार कर सारे कपड़े धो लिए। अब कपड़े जब भीग जाते हैं तब वजन और बढ़ जाता है। फिर से गधे के ऊपर वह सामान रखा। गधा ने सोचा अब तो मैं नहीं चलूंगा, गाजर आएगा तो ही चलूंगा। फिर से धोबी ने वह गाजर रख दिया। गधा ने सोचा अब तो मुंह में आ जाएगा। लोग परिश्रम करते हैं ना कि आज नहीं कमाए तो कल कमा लेंगे, परसों कमा लेंगे, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। परंतु रिटर्न घर आ गया, फिर भी वह गाजर धोबी ने गधे को नहीं दिया। वैसे वो गाजर हमारे सुख की तरह है, हमें लगता है कि बस अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, परंतु वह सुख कभी नहीं आता है। जिस दिन से ये एमवे कंपनी वाले ने अपना मार्केटिंग शुरू किया है, उस दिन से हमारे गांव के, अब भक्त तो नहीं कहा जाएगा, भक्त नहीं है, परंतु हमारे गांव के व्यक्ति एमवे कंपनी में है, और कई सालों से जब तक मुझे होश आया है उस दिन से मैं सुन रहा हूं कि मुझे हेलीकॉप्टर मिलेगा, हेलीकॉप्टर मिलेगा। आज तक बेचारे को साइकिल भी नहीं मिला, लेकिन आज भी उतना ही उत्साह है उनको कि हेलीकॉप्टर मिलेगा। ये है, सबको ऐसा होता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, लेकिन होते नहीं है। तो ऐसा प्रश्न होना चाहिए, प्रश्न भी बुद्धिमानी वाला होना चाहिए। देखिए, हम यदि इस प्रकार से प्रश्न नहीं करेंगे, जिज्ञासा नहीं करेंगे, तो वास्तव में हम सुखी नहीं हो पाएंगे। आप देखिए, इस संसार में जितने जितने लोगों को भगवान मिले हैं, जितने जितने लोग सुखी हुए, सब लोगों ने जिज्ञासा की है। फिर चाहे परीक्षित हो, अर्जुन हो, नैमिषारण्य के 88,000 ऋषि मुनि हो, चाहे याज्ञवल्क ऋषि हो, ये सब लोगों ने जिज्ञासा की। याज्ञवल्क ऋषि ने जिज्ञासा की, रामायण प्राप्त हुई। अर्जुन ने जिज्ञासा की, भगवत गीता मिली। परीक्षित ने जिज्ञासा की, भागवत मिला। जिज्ञासा से भगवान मिलते हैं, जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ये ठीक है, इतना समझ में आ गया, मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिज्ञासा होनी चाहिए। और कैसी जिज्ञासा होनी चाहिए, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं दुखी क्यों हूं। परंतु अब ये प्रश्न उठ सकता है कि ऐसी जिज्ञासा हम किसके सामने करें, ऐसा ज्ञान कहां से प्राप्त करें। अब रास्ते में किसी को भी पकड़कर पूछने लोगों में दुखी क्यों हूं, तो सही उत्तर नहीं मिलेगा ना। तो जिज्ञासा होनी चाहिए, परंतु जिज्ञासा से ज्ञान कहां से प्राप्त करना चाहिए, ये बुद्धिमानी है। किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रमाण होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। इस संसार में बोलने वाले तो बहुत हैं, सब लोग बोलना चाहते हैं, और बोलना शुरू करते हैं तो फिर किसी का टर्न नहीं आता है। और प्राय स्त्रियों में यह देखा जाता है। एक बार एक पति पत्नी डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर के पास जाकर पत्नी ने पति को सुला दिया, चलो सो, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब अब इसका कुछ कीजिए, क्या हुआ, ये रात भर बोलते रहते हैं, सोने का समय होता है, रात भर नींद में बोलना शुरू होता है इसका, बोलते रहते। डॉक्टर साहब ने कहा, दवाई की जरूरत नहीं है, दिन में मौका दो, रात में बंद हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं, बोलते ही रहते हैं। परंतु किसी भी व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए, सुनने के लिए कोई प्रमाणित होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रूफ चाहिए। आप कोर्ट में भी जाओ तो जो जज होते हैं वो प्रूफ चाहते हैं। तो इस संसार का ऐरा गैरा ज्ञान नहीं चाहिए, शुद्ध ज्ञान चाहिए। तो शुद्ध ज्ञान के लिए प्रमाण, तो आचार्यों के द्वारा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा यह स्थापित किया गया है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए मात्र तीन प्रमाण है। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक अनुमान प्रमाण, और एक शब्द प्रमाण। हम ये तीनों प्रमाण के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। ये तीन विधि से, ये तीन प्रूफ प्रमाण से ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम हम प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में जानेंगे, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है, संस्कृत की व्युक्ति के अनुसार यदि आप देखोगे तो प्रति का अर्थ होता है सामने, और अक्ष का अर्थ होता है आंख, अपने आंखों से देखी हुई बात। अर्थात दूसरे शब्दों में, इस संसार में कुछ लोग कहते हैं कि मैं मेरी आंखों से देखूंगा उसे स्वीकार करूंगा, मैं देखूंगा तब मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। कुछ लोग कहते हैं ना, क्या आप हरे कृष्ण करते हो, क्या कभी देखा है कृष्ण को, जब हम देखेंगे तब मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। प्राय साइंस इस प्रमाण को मानते हैं। तो यह है प्रत्यक्ष प्रमाण। परंतु यह प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्ण विधि नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण से प्राप्त किया गया ज्ञान पूर्ण और शुद्ध नहीं हो सकता है, परफेक्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान अपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण हमारी इंद्रियों के ऊपर आधारित है और हमारी इंद्रिया जो है अपूर्ण है, और अपूर्ण इंद्रिया के द्वारा यदि हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वह ज्ञान भी अपूर्ण प्राप्त होगा। हमारी इंद्रिया अपूर्ण कैसे हैं? हमारी इंद्रियों में दोष क्या है? चार प्रकार के दोष हैं। उनमें से पहला दोष है अपूर्ण इंद्रिय। अपूर्ण इंद्रिय अर्थात हमारी इंद्रियों में कुछ कमी है, और वह कमी क्या है? कमी यह है कि हम लोग हमारे आंखों से बिल्कुल निकट वस्तु को भी नहीं देख सकते। जैसे इस दीवार के उस पार क्या हो रहा है हम नहीं जान सकते। जैसे हमारी आंखों से हम एक दूसरों को अभी देख रहे हैं, परंतु तुरंत अभी लाइट चली जाए तो दूसरे की बात दूरी हमारे हाथ को भी नहीं देख सकते हैं। और हो सकता है कि यहां पर एक रस्सी लटक रही है, परंतु अंधेरे में साफ 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 करके सब लोग भागने लगे। तो हमारी आंखें जो है अंधेरे में नहीं देख सकती हैं, दीवार के उस पार नहीं देख सकती हैं, यहां तक 24 घंटा जिसका इस्तेमाल करती है हवा उसे भी नहीं देख सकती है। तो ये पहला दोष है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हमारी इंद्रियों का दूसरा दोष मोहग्रस्त होने की वृत्ति। हम मोहित हो जाते हैं। मोहित का अर्थ आप लोगों ने कभी अनुभव किया होगा, आप यदि गर्मी की सीजन में हाईवे से जा रहे हो किसी कार के द्वारा तो बहुत दूर पानी पानी दिखता है, पानी का अनुभव होता है, परंतु वो पानी नहीं होता, पानी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी आंखों से वो पानी दिखता है। यह है मोहग्रस्त, जो नहीं है फिर भी दिखता है और जो दिखता है वह नहीं है। और एक दृष्टांत में आपको दूं, आप ऑरेंज तो खाते होंगे, संतरा, अब देखिए एक संतरा आप लीजिए, वह संतरा शक्कर को पहले खाओ और बाद में उस संतरे को खाओगे तो वह संतरा खट्टा लगेगा। आप उस संतरे को दो भाग कर दीजिए, परंतु आप थोड़ा नींबू लगा दीजिए अपने मुंह में, थोड़ा नींबू को चख लीजिए और फिर उसी संतरे को खाइए, आपको स्वीट लगेगा, मीठा लगेगा। एक ही संतरा खट्टा भी लगता है और मीठा भी लगता है। यह है मोहग्रस्त होना। आप, मैं बचपन में तीसरी कक्षा में इस सिद्धांत को पढ़ा हूं। आप देखिए एक बाउल में पानी लीजिए, नॉर्मल पानी, साधारण पानी, और दूसरे बाउल में गर्म पानी और एक बाउल में ठंडा पानी बर्फ का। तो आप गर्म पानी में अपना हाथ रखिए और गर्म पानी से हाथ निकालकर वह नॉर्मल पानी में हाथ रखोगे तो वह पानी ठंडा लगेगा। यद्यपि वह नॉर्मल है परंतु गर्म पानी से हाथ निकालकर डालोगे तो ठंडा लगेगा, और बर्फ वाले पानी में आप हाथ रखोगे वहां से निकालकर नॉर्मल पानी में डालोगे तो वही पानी गर्म लगेगा। एक ही पानी, पानी एक ही है, ठंडा भी लगता है गर्म भी लगता है। अब देखिए यह है हमारी इंद्रियों की दशा, मोहग्रस्त हो जाते हैं, पानी को नहीं पहचान पाते हैं, संतरा को नहीं पहचान पाते हैं, वह शुद्ध ज्ञान को कैसे पहचानेंगे। ये दूसरा दोष। तीसरा दोष है गलतियां करने की वृत्ति। हम सबसे, हमारी इंद्रियों से गलती हो ही जाती है, कितना भी अच्छा चोर हो परंतु वो पकड़ा ही जाता है। और चौथा दोष है धोखा देना और धोखा खाने की वृत्ति। धोखा देने की वृत्ति स्वाभाविक हमारी इंद्रियों में बन चुकी। अब देखिए सब्जी मार्केट से लेकर ये राजकारण तक सब लोग धोखा देते हैं। सब्जी मार्केट में जाएंगे, टमाटर कितना दिया? 10 रुपया किलो। अरे बाजू वाला 8 रुपये किलो देता है, 2 रुपया ज्यादा, और यदि वह 2 रुपया कम कर देगा तो वजन कम देगा, यदि वजन ज्यादा देगा तो सड़ा हुआ दे देगा, कहीं ना कहीं धोखा दे ही देते हैं। अब देखिए ये नेता लोग भाषण करते हैं इलेक्शन से पहले कि हम लोग तेल का भाव कम कर देंगे, सबके घर पर बिजली का भाव कम हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता है, धोखा देते हैं बस सब लोग धोखा। और दूसरों की क्या बताए, हमारी अपनी ही सुनिए। ट्रेन में खड़े हैं, भाई आप कहां पहुंचे हो? मैं दादर स्टेशन पहुंच गया है वह चन्नी रोड, परंतु मैं पहुंच गया, अब क्या मिलने वाला है इससे। लेकिन बस ये स्वाभाविक है, बन ही जाता है, धोखा देने की वृत्ति आ ही जाती है। तो इस प्रकार से धोखा, और आप देखिए जब मैं SSC कंप्लीट करके FIJC में गया तो हमारा एक पहला PDR था अकाउंट्स बुक कीपिंग का, तो हमारे सर आए कमलेश शर्मा, और आकर उन्होंने अपना इंट्रोड्यूस कैसे दिया, वे आए और ब्लैक बोर्ड के ऊपर उन्होंने एक सेंटेंस लिखा इंग्लिश में। सेंटेंस क्या था कि बिना झूठ बोले इस संसार में कोई बिजनेस नहीं कर सकता है, इसलिए आप मेरे पास आए हो अकाउंट सीखने के लिए तो सबसे पहले झूठ बोलने की आदत डाल दो। और ये सत्य भी है, बिना झूठ बोले आज कौन बिजनेस कर सकता है। कुछ भी आप माल खरीदे हो तो सामने वाले को कहना होगा नहीं मुझे नहीं परवड़ता है, आया है कम भाव में, परंतु ज्यादा ही बोलना पड़ता है। तो झूठ बोलने की वृत्ति, धोखा देने की, तो इस प्रकार से हमारी इंद्रियों में यह दोष है। इसलिए इंद्रियों से यदि हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वह ज्ञान अपूर्ण होगा, दोषमय होगा। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण की विधि जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए परफेक्ट विधि नहीं है। तब दूसरा प्रमाण है वह है अनुमान प्रमाण, अनुमान विधि। यह अनुमान प्रमाण किसे कहते हैं? इस अनुमान प्रमाण में भी हमारी इंद्रियों के द्वारा किसी वस्तु को देखा जाता है, और उस वस्तु को देखने के बाद उस पर बुद्धि लगाई जाती है, और फिर जो निर्णय आता है वो है अनुमान प्रमाण। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि जानना है कि सूर्य कितना बड़ा है तो आंखों के द्वारा यदि देखेंगे तो सूर्य थाली के जितना दिखता है, लेकिन फिर उसके ऊपर बुद्धि लगाते हैं नहीं नहीं सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है इसलिए छोटा दिख रहा है, यद्यपि वो बहुत बड़ा है, सूर्य बड़ा है। तो अनुमान प्रमाण के द्वारा इतना तो साबित हो गया सूर्य छोटा नहीं सूर्य बड़ा है, परंतु सूर्य कितना किलोमीटर बड़ा है, क्या रेंज है उसका, ये जान नहीं पाएंगे। तो अनुमान प्रमाण से भी हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और एक दृष्टांत, मानो इस दीवार के उस पार कुछ फूटने का आवाज आया, तो आवाज आई तो आवाज के बाद हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह कांच का होगा बर्तन किसका होगा, यह नहीं जान सकते। तो ये परफेक्ट सोर्स नहीं है ज्ञान प्राप्त करने का। तब हमारे पास केवल तीसरी विधि, एक चांस है, वो है शब्द प्रमाण। और शब्द प्रमाण इज अ परफेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान प्राप्त करने का शुद्ध तरीका है, परफेक्ट। शब्द प्रमाण किसे कहते हैं? शब्द माने मैं जो बोल रहा हूं वह शब्द, या जो लिखा हुआ है वह शब्द, इसे कहते हैं शब्द प्रमाण। ये जो शब्द प्रमाण की विधि है ये ज्ञान प्राप्त करने की परफेक्ट विधि है। और इस शब्द प्रमाण के अलावा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। जैसे मानो अभी क्रिकेट मैच चल रही है कहीं भी, अभी तो IPL चल रहा है ना, आने वाले दिनों में श्रीमद् भागवत कथा सचिन तेंदुलकर के वहां हमारी होने वाली है, तो सचिन तेंदुलकर का फोन था। देखिए कितना श्रद्धालु है, भले पेपर में भर भर के आता है क्रिकेट का भगवान, ये भगवान वो भगवान, लेकिन सचिन तेंदुलकर का जो सुपुत्र है उनका सन है उनका नामकरण हमारे भक्तों ने ही किया है, उनका नाम अर्जुन है। तो उनकी इच्छा है कि लाल गोविंद प्रभु आप आइए और हमारे वहां भागवत कथा कीजिए, तो बांद्रा में MIG क्लब उन्होंने अपने पुत्र के लिए बनाया है। तो वास्तव में 14 अप्रैल से वहां भागवत कथा थी, परंतु उन्होंने फोन करके कहा कि अभी मैं IPL क्रिकेट मैच में हूं इसलिए मुझे पता है आप 2 मई को वहां पर कथा कीजिए। तो मैच चल रही है, मानो पाकिस्तान में मैच चल रही है या ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रही है और किसी को जानना है कि उस मैच में क्या स्कोर हुआ है, तो वो व्यक्ति कैसे जानेगा? क्या फ्लाइट की टिकट लेकर ऑस्ट्रेलिया जाकर देखेगा कि क्या स्कोर हुआ है? है संभव? प्रैक्टिकल नहीं। उसके पास एक ही रास्ता, या तो रेडियो शुरू करे या टीवी शुरू करे, और रेडियो और टीवी में बस देख सकता है। और इसी को कहते हैं शब्द प्रमाण। रेडियो से क्या निकलता है? शब्द। प्रवचन में वक्ता से क्या निकलता है? शब्द, शब्द प्रमाण। परंतु कुछ लोग कहे नहीं, ये रेडियो वाले के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, रेडियो वाली के ऊपर भरोसा नहीं है, तो क्या करेंगे? ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, विश्वास भरोसा करना ही होगा। जैसे न्यूज़पेपर में लिखकर आता है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगल में ये हुआ, तब उसे स्वीकार करना ही होगा। हम जंगल में तो वहां जा नहीं सकते हैं। एक अणु में कितने परमाणु है ये जानने के लिए आप अपनी आंखों से अणु को कैसे देख सकते हो? उसके लिए साइंस की किताब खोलनी होगी। शब्द प्रमाण स्वीकार करना ही होगा। तो शब्द प्रमाण जो है परफेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, विज्ञान प्राप्त करने का परफेक्ट पूर्ण शुद्ध तरीका है। इसलिए शब्द प्रमाण के ऊपर विश्वास होना चाहिए। देखिए मैं प्राय कहता हूं, इस संसार में लोग सब के ऊपर विश्वास करते हैं, परंतु शब्द प्रमाण के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। अब देखिए, हम सुबह उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले ब्रश करते हैं। तो यदि मान लो आपका ब्रश करने वाले उस कंपनी कोलगेट कंपनी के ऊपर से आपका विश्वास उठ जाए कि सालों ने इसमें जहर मिला दिया होगा तो मार डालेंगे, ब्रश कर पाएंगे नहीं, ना धोने के बाद फिर दूध पीने का समय आएगा तब आपका विश्वास उठ जाए भैये ने इसमें जहर मिला दिया होगा तो दूध पी पाएंगे। फिर ऑफिस जाने के लिए रिक्शा पकड़ने के लिए आपको फिर सोचो कि इसने एक्सीडेंट कर दिया तो रिक्शा में बैठ पाओगे? चलो फिर चलकर स्टेशन पहुंच गए, लेकिन उस मोटरमैन के ऊपर विश्वास उठ गया तो ये एक्सीडेंट कर देगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। विश्वास करना ही होगा और हम करते ही हैं। आप देखिए, हम लोग कोलगेट कंपनी के ऊपर विश्वास करते हैं, दूध वाले भैये के ऊपर विश्वास करते हैं, रिक्शा वाले के ऊपर विश्वास करते हैं, मोटरमैन के ऊपर विश्वास करते हैं, परंतु शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं करते, शब्द प्रमाण के ऊपर विश्वास नहीं करते। दुर्भाग्य है। शब्द प्रमाण के ऊपर विश्वास होना चाहिए और शब्द प्रमाण ही परफेक्ट सोर्स है। तो प्रश्न हो सकता है, ये शब्द प्रमाण क्या है? ये शब्द प्रमाण जो है वेद है, वेद ही शब्द प्रमाण है और वेद पूर्ण है। क्यों? क्योंकि वेद की जिसने रचना की है वह रचना करने वाला पूर्ण है। वेद का निर्माण भगवान ने किया है और भगवान उपनिषद कहती है, ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिदह पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। भगवान पूर्ण है और भगवान से जो निकलता है वह भी पूर्ण होता है। क्योंकि यह वेद भगवान से प्रकट हुए हैं इसलिए यह वेद पूर्ण है, और इस पूर्ण वेद को हम स्वीकार करेंगे तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। तब एक प्रश्न उठ सकता है कि ये जो वेद है भगवान से प्रकट हुआ है कैसे जाने? शास्त्र में लिखा है, वेद प्रणिहितो धर्म यह धर्म एतत् विपर्यय वेदः नारायणः साक्षात। वेद जो है साक्षात नारायण है, स्वयंभू इति सुश्रुमः, स्वयंभू है जो भगवान से प्रकट हुए हैं। और रामायण में तो यहां तक कहा गया, जब भगवान श्री रामचंद्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में जा रहे थे तो रामायण के रचयिता के लिखते हैं, जाके वेद श्वास श्रुति चारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिस भगवान के सांस से वेद प्रकट हुए हैं ऐसे भगवान पढ़ने जा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। भगवान के सांस से वेद निकले हैं, पूर्ण भगवान के सांस से निकले हुए वेद भी पूर्ण है। और इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, भगवान के सांस से वेद निकले तो बहुत बड़ी बात है। भगवान जिस वाहन के ऊपर सवार होते हैं वह गरुड़ जी, जानते हैं आप, भगवान गरुड़ जी के ऊपर बैठकर सवार होते हैं। भगवान की बात छोड़ दीजिए, भगवान का वाहन गरुड़ जी जब अपनी पंख फड़फड़ाते हैं तो उनके पंख से साम वेद की ध्वनि निकलती है। हम जिस वाहन से जाते हैं वो तो धुएं के अलावा कुछ नहीं छोड़ता है, तो भगवान का वाहन से वेद की ध्वनि निकलती है, तो भगवान से वेद प्रकट हो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो पूर्ण भगवान से यह पूर्ण वेद प्रकट हुए हैं, वेद पूर्ण है, इसलिए वेदों से ये जो हमारी जिज्ञासा है ना, ये जिज्ञासा का ज्ञान वेदों से प्राप्त करना चाहिए। फिर भी कुछ लोगों के मन में हो सकता है हम कैसे स्वीकार करें कि वेद परफेक्ट है, प्रमाण चाहिए ना, सबूत चाहिए, तो एक नहीं सैकड़ों प्रमाण है। वेद जो है परफेक्ट है यह जानने के लिए सबसे पहला प्रमाण कि आजकल के साइंटिस्टों ने यह साबित किया है कि गाय का गोबर जो है पवित्र है, यद्यपि वह गाय का मल है परंतु पवित्र है। उस गाय के गोबर में कई सारी एंटीसेप्टिक तत्व है जो सभी रोग नाशक तत्व, सभी रोगों को मिटाने वाला तत्व है उसमें। ये वैज्ञानिकों ने 200-300 साल पहले साबित किया, परंतु यही बात वेद में करोड़ों वर्ष पहले लिखी गई है, परंतु आज के साइंटिस्ट पर विश्वास नहीं करते और रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करके क्या रिसर्च करते हैं, जो वेदों में लिखा है वही। तो भाई डायरेक्ट ही वहां से स्वीकार करो ना, क्यों मेहनत कर रहे हो, क्यों संपत्ति का नाश कर रहे हो, मिसाइल छोड़ते हैं मंगल में क्या है सूर्य, अरे भागवत खोलकर देखो पंचम स्कंद में सब कुछ लिखा है। कभी कभी बुलाना चाहिए साइंटिस्टों को हमारे पास, सब कुछ वही क्या जानेंगे। आजकल के प्रभुपाद जी लिखते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं मंगल पर जाकर आए, मंगल ग्रह पर क्या देखा आपने, अरे वहां कुछ कोई है ही नहीं, कोई जीव जंतु कुछ नहीं। भागवत क्लियर कहता है कि मंगल पर कई सारे जीव रहते हैं, और ये साइंटिस्ट क्या कहते हैं, हम जाकर आए वहां पर जीव नहीं है। पूछा गया क्यों जीव नहीं है, क्योंकि वहां पर वातावरण नहीं है, हवा नहीं है। तो पूछा गया आप वहां जाकर आए सबूत क्या है, कहे हम फोटो खींच कर आए, अपना झंडा गाड़ कर आए अमेरिका का। अब फोटो आप देखोगे तो उस फोटो में झंडा लहरा रहा है हवा में, और मूर्ख लोग कहते हैं कि वहां वातावरण नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं किसी रेगिस्तान में जाकर आए होंगे फोटो खींचकर, और कहते हैं हम मंगल में जाकर आए हैं। वास्तव में हाँ, वेदों में बहुत करोड़ों वर्ष पहले से लिखा है, बस केवल उसे डायरेक्ट स्वीकार करना। अब देखिए ये वनस्पति जो है वृक्ष इत्यादि, उसमें जीवन है, ये किसने साबित किया, जगदीश चंद्र बोस, हम लोग पढ़ चुके हैं इसे, जगदीश चंद्र बोस। वाह अच्छा हुआ उन्होंने साबित किया, नहीं तो आज के मूर्ख यह भी नहीं मानते हैं। तो 200-300 ज्यादा ज्यादा 400 साल हुआ होगा जगदीश चंद्र बोस ने साबित किया वनस्पति में जीवन है, परंतु यह बात वेदों में करोड़ों वर्ष पहले लिखी हुई है। जलजा नव लक्षाणी स्थावरा लक्ष्य विशंति, 20 प्रकार की वनस्पति है जिसमें जीवन है, वेदों में पहले पद्म पुराण में लिखा है। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं। अब तीसरा प्रमाण, हमारे साइंटिस्टों ने कहा सबसे पहले क्या निर्णय लिया था, ये पृथ्वी जो है चोरस है, लेकिन धीरे धीरे फिर उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करके बाद फाइनल डिसीजन दिया कि नहीं नहीं पृथ्वी तो गोल है। तो ये फाइनल डिसीजन 500-600 वर्ष पहले लिया कि पृथ्वी गोल है, परंतु यही बात वेदों में करोड़ों वर्ष पहले लिखा हुआ है पृथ्वी गोल है, ये है प्रमाण। वेद बिल्कुल परफेक्ट है, और आज भी वेदों में बहुत भविष्यवाणी की गई है। वेदों में लिखा गया है कि स एव चंद्रगुप्तम वे द्विजो राज्य विशेष देक्षति तत्सुतो वारिसारस्तु तत्वा अशोक वर्धन। करोड़ों वर्ष पहले लिखा गया है कि कलयुग में अशोक नाम का एक राजा आएगा जो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अशोक सम्राट के बारे में, जीसस क्राइस्ट के बारे में, मोहम्मद पैगंबर के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, ये सब के बारे में वेदों में लिखा है। आज भी जो घटना घट रही है यह भी वेदों में लिखा है, कलयुग में क्या होगा बहुत कुछ लिखा है। मैं सैंपल दे दूं, वेदों में लिखा है कलयुग में लोगों का श्रृंगार सोना और गहना नहीं रहेगा, कलयुग में लोगों का श्रृंगार बाल रहेगा। लोग ज्यादा से ज्यादा धन अपना खर्च बाल पर करेंगे, और दिखाई दे रहा है कैसा कैसा कट करते हैं यहां से कुछ। मैंने एक मायापुर में देखा, एक व्यक्ति ने यहां से कटिंग कर दिया और यहां से बाल इतना, केवल इतना। बाल पर कुछ लिखाते हैं, बाल पर नक्शा दौड़ते हैं, बाल पर। तो वेदों में करोड़ों वर्ष पहले से यह लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं वेद परफेक्ट हैं। आज साइंस ने यह साबित किया, सोनोग्राफी सिस्टम, मां के गर्भ में बालक धीरे 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 कैसे प्रगति करता है। परंतु करोड़ों वर्ष पहले वेदों में भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को पूरा साइंस समझाया हुआ है। और आज का साइंस तो अधूरा है, पागलपन है। आज का साइंस क्या है, डॉक्टर कहते हैं कि जब गर्भाधान होता है उसके 3 महीने बाद उसमें जीवन आता है, परंतु वेद कहता है कि जिस दिन गर्भाधान होता है उसी दिन से उसमें आत्मा आ जाती। ये है वेद। आज नहीं मानते, कल यही साइंस इसे मानेगा। हो सकता है कमाने के लिए, एबॉर्शन करने के लिए लोग नहीं मानते हैं डॉक्टर, परंतु तात्पर्य सार यह है कि यह सब प्रमाणों से यह साबित होता है वेद जो है परफेक्ट है। इसलिए वेद को मानना चाहिए, जानना चाहिए। अब वेदों के बारे में कुछ संक्षिप्त में और जानकारी मैं आपको दे दूं। वेदों का निर्माण भगवान ने किया है। क्यों किया भगवान ने वेद का निर्माण? भगवान ने अपने धाम में बैठे बैठे सोचा, माया मुग्ध जीवे नाही स्वत स्मृति ज्ञान, माया मुक्त जीवे नाही स्मत स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपाए केल जीवेर कृपाए केल कृष्ण वेद पुराण। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान ने सोचा माया मुग्ध जीवे नाही स्वत स्मृति ज्ञान। इस संसार के जीवों को जो माया में फंसे हुए हैं स्वतः ज्ञान नहीं हो सकता है, इसे ज्ञान देना होगा, और ज्ञान देने के लिए वेदों का निर्माण। वेदों की हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जैसे ही भगवान ने यह संसार बनाया इस संसार के साथ वेदों का निर्माण किया। भगवान ने सोचा कि यह जीव मुझसे विमुख होकर जा तो रहा है परंतु इस संसार में बहुत दुखी होगा, लेकिन भगवान ने वेद बनाए और वेद स्पेशल मनुष्य के लिए, ताकि मनुष्य इस वेद को पढ़े और पढ़कर अपना जीवन इस वेद के अनुसार व्यापन करे। यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार अपना जीवन व्यापन करता है निश्चित इस जीवन में भी सुखी हो जाता है और मृत्यु के बाद भी सुखी हो जाता है। परंतु हम न तो वेद जानते हैं न मानते हैं, हमें पता भी नहीं है वेद क्या है। ऐसी स्थिति तब क्या होगा, जीवन बिगड़ जाएगा। मैं प्राय दृष्टांत देता हूं, जैसे इस संसार में कोई कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, जैसे सोनी कंपनी वाले नया डीवीडी प्लेयर लॉन्च करते हैं, और यदि कोई उसे खरीदने जाए तो उस डीवीडी प्लेयर के साथ एक मैनुअल देते हैं, उसमें लिखा होता है कैसे इसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि अब नई सिस्टम आ रही है। मैंने कल ही सुना अब एक ऐसी डीवीडी सिस्टम आ रही है, आज तक एक डीवीडी में केवल 4.7 GB का डेटा रह सकता था, लेकिन अब ऐसी डीवीडी आ रही है जिसमें 8.14 GB का डेटा रहेगा, और एक ऐसी डीवीडी आ रही है जिसमें 50 GB का डेटा रहेगा, 50 GB। अब कंप्यूटर जानने वाले जानेंगे इस बात को। तो उसे चलाने के लिए नया प्लेयर किसी सोनी कंपनी ने लॉन्च किया तो उसके साथ कुछ मैनुअल होता है, क्यों, ताकि उसे कैसे चलाना चाहिए। परंतु यदि कोई व्यक्ति डीवीडी प्लेयर लेकर घर पर आया और मैनुअल को दुकान पर छोड़कर आया तब क्या होगा, घर पे आके शुरू करेगा, उसमें उंगली करेगा, सिस्टम तो पता नहीं है, और उंगली करते करते पहले ही दिन उसे बिगाड़ देगा। तो जैसे बिना मैनुअल के वो डीवीडी प्लेयर बिगड़ गया, वैसे बिना वेदों को जाने हमारा जीवन भी बिगड़ गया है। बिना वेद को जाने। इसलिए वेद को जानना होगा, वेदों को मानना होगा, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए, वेदों को स्वीकार करना होगा, नहीं तो हमारा जीवन भयावह हो जाएगा। तो वेदों के बारे में विशेष जानकारी, भगवान ने वेदों का निर्माण किया है और वास्तव में द्वापर युग तक यह वेद जो थे केवल श्रुति में थे। श्रुति में जानते हैं, श्रुति का अर्थ जो मैंने आपको कहा, आपने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, ऐसा लिखना बिखना नहीं पड़ता था। द्वापर युग तक कोई भी स्टूडेंट अपने गुरु के पास बुक और पेन लेकर नहीं जाता था। आज तो बुक और पेन बैग में भर भर के जाते हैं, लैपटॉप लेकर जाते हैं, लेकिन द्वापर युग तक कोई लिखना नहीं, गुरु बोलते थे, शिष्य को याद रह जाता था, पूरा याद कर लेते थे। इसे कहते हैं श्रुति धर। द्वापर युग तक यह वेद श्रुतियों में थे, जिसे भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान कहते इमम विवस्वते योगम। ये अर्जुन, ये गीता का ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया। प्रोक्तावान अहम ययम विवस्वान मनवे प्राओ मनु इक्ष्वा कवे ब्रवीत। विवस्वान ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने मनु, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। स एवाय मया तेज्ञ योग प्रोक्त पुरातन। वही ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो पहले एक दूसरे को ज्ञान चलता था, लिखते नहीं थे, परंतु कलयुग के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इस कलयुग में लोगों की बुद्धि मंद है, प्रायण अल्प आयुष्य सभ्य कलोस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतय मंद भाग्य उपद्रुता। कलयुग में सबकी बुद्धि बहुत वीक है। परसों दोपहर को कौन सी सब्जी खाई याद है आपको? अब क्या वेद को याद रखेंगे है? ये है मनुष्य के लोगों की बुद्धि, ये सब कुछ याद नहीं रहता है। ये प्रवचन भी आप एक घंटा सुनोगे, लेकिन बाहर जाकर बोलना होगा तो 10 मिनट में सब सार हो जाएगा। कभी कभी होता है 2-3 घंटा प्रवचन सुनते हैं, फिर बहुत उत्साह में हम दूसरे को सुनाने जाते हैं तो 10 मिनट में खाली हो जाता है। 1 घंटे में 10 मिनट तो याद रहता है, उनमें भी कितनी त्रुटियां और दोष होते हैं। भगवान को यह पता था, इसलिए भगवान ने कलयुग के प्रारंभ में सोचा कि श्रुतिधर कोई नहीं है, इसलिए इसे लिपिबद्ध करना होगा। तब उसी भगवान श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार वेद व्यास जी द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में इस वेद को लिपिबद्ध किए। भगवान के द्वारा एक वेद का निर्माण था, परंतु व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने इस वेद का विभाजन किया, इसलिए उसका नाम व्यास हुआ, नहीं तो उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। कृष्णा के तट पर, यमुना के तट पर, यमुना के द्वीप के ऊपर उनका जन्म, कृष्ण द्वैपायन उनका नाम था। वेदों का विस्तार व्यास करने के कारण उनका नाम वेद व्यास हुआ। तो वेद व्यास जी ने एक वेद का 4 विभाजन, सामवेद, ऋग्वेद, यथर्व अथर्ववेद और यजुर्वेद, इस प्रकार वेदों का विभाजन 4 वेद किए। और इस एक एक वेदों में 1130 चैप्टर और एक एक चैप्टर में 4-4 भाग, ब्रह्मण्यक, हिरण्यक, उपनिषद और संबित। इस प्रकार से यह वेद बहुत विशाल मात्रा में, और उस वेद को समझाने के लिए वेद व्यास जी ने 108 उपनिषद लिखे। उस 108 उपनिषद को समझाने के लिए वेदांत सूत्र का निर्माण किया। उस वेदांत सूत्र को समझाने के लिए 18 पुराण की रचना की, उनमें से एक भागवत। और वेद व्यास जी ने देखा स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रैन श्रुति गोचर। स्त्री शूद्र और द्विज बंधु को का अधिकार वेदों के ऊपर नहीं है, इसलिए उन लोगों को ऊपर कृपा करके वेद व्यास जी ने 1,00,000 श्लोक रचित महाभारत और रामायण की रचना की, इतिहास लिखे। इतने सारे वेद विशाल मात्रा में वेद व्यास जी के द्वारा निर्माण हुए। परंतु भक्तों, दुख की बात मैं आपको कहूं, वेद व्यास जी के द्वारा मानव कल्याण के लिए कलयुग के जीव का उद्धार उद्धार करने के लिए वेद लिखे गए, परंतु आज से 500 वर्ष पूर्व मुसलमान की मोगल सेना जब यहां पर आई, मथुरा में 6 महीने तक रही और 6 महीने तक उन्होंने मथुरा में वास किया, और ये हजारों की मात्रा में जो सेना थी 6 महीने तक जो रहे, और रहकर जो उन्होंने भोजन पकाया, वह भोजन पकाने में जो ईंधन था वह हमारे भारत के वेद थे। मुसलमानों ने हमारे वेद को जलाकर राख कर दिया, एज इट इज वेद व्यास जी के वेद को जला डाला, और जितने वेद थे 94% वेद वे जलाकर चले गए। आज हमारे भारत की लाइब्रेरी में 6% वेद बचे हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। कभी पंढरपुर गए हो, वहां पर वेद रखा गया है, एक वेद वहां पर है संक्षिप्त भाग। तो इस प्रकार केवल 6% वेद बचे हैं, परंतु ये 6% वेद को भी यदि आपको पढ़ना है इम्पॉसिबल, क्योंकि इतने ये वेद जो है बहुत सारी मात्रा में है, इसके लिए आप 10 जन्म लेना होगा तब पढ़ पाओगे, और 10 जन्म में भी यदि आप पढ़ोगे तो फिर समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि यह जो वेद है अलौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। 2 प्रकार का संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत एक अलौकिक संस्कृत। यहां तो लौकिक संस्कृत का भी कुछ ठिकाना नहीं है, ये संस्कृत भी नहीं आता है तो अलौकिक संस्कृत क्या पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ये सारी बात को जानते थे कि कलयुग में ऐसा होने वाला है, इसलिए भगवान ने सोचा कि कलयुग में न तो किसी के पास बुद्धि है, न तो किसी के पास समय है, कलयुग के लोग सार ग्रही है, सार चाहिए, बस एसेंस चाहिए, होता है ना। ये स्टूडेंट लोग पढ़ते हैं तो साल भर मेहनत नहीं करते, फिर साल के अंत में गाइड लेकर बैठ जाते हैं, गाइड में मानते हैं। कलयुग के लोग को गाइड चाहिए। भगवान जानते थे कलयुग के लोगों की बुद्धि प्रायण अल्प, इसलिए भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अर्जुन को माध्यम बनाकर ये 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, रामायण महाभारत, ये सभी वेद वेदांत का सार एकमात्र छोटी सी 700 श्लोक की भगवत गीता में दे दिया, और यदि कोई व्यक्ति इस भगवत गीता को पढ़ता है तो सारे वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा हरे
राम राम हरे हरे।
तो इस प्रकार ये भगवत गीता जो है सभी वेद उपनिषद शास्त्रों का सार है, एसेंस है। 700 श्लोक भगवत गीता में है, और यह भगवत गीता श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं सर्व उपनिषदो गाओ दुग्धम गोपाल नंदन पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता। सर्व उपनिषदो गाओ, सभी उपनिषद वेदों की उपमा यदि गाय के साथ की जाए, वेद उपनिषद की कंपैरिजन गाय के साथ की जाए, तो जैसे गाय का सार दूध होता है वैसे सभी वेद उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवत गीता है। इस दूध को दोहने वाला वह गोपाल नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्ण है, और कृष्ण उस दूध को पार्थ को अर्जुन को पिला रहे हैं, परंतु वे कहते हैं कि अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान श्री कृष्ण हम सबको भगवत गीता पिलाना चाहते हैं, हम सबको गीता देना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से श्रीमद् भगवत गीता का उच्चारण किया है, और यह श्रीमद् भगवत गीता में 701 श्लोक है। इस भगवत गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा 574 श्लोक का उच्चारण हुआ है, अर्जुन के द्वारा 84 श्लोक, संजय के द्वारा 42 और धृतराष्ट्र के द्वारा 1 श्लोक का उच्चारण हुआ है। कुल मिलाकर 701 श्लोक की यह भगवत गीता है, और यह भगवत गीता संस्कृत में दी गई है। अब एक प्रश्न हो सकता है कि ठीक है, जिज्ञासा करनी चाहिए, अच्छी जिज्ञासा करनी चाहिए हैं, और वह जिज्ञासा वेदों से करनी चाहिए, परंतु वेदों का सार भगवत गीता है, ठीक है, अब हम घर पर जाकर भगवत गीता पढ़ेंगे, परंतु जैसे ही आप किसी दुकान में जाओगे हमें भगवत गीता दो, तो दुकान वाला कहेगा कौन सी भगवत गीता दूं, क्या उसमें भी दो चार पंद्रह बीस भगवत गीता है? दो चार पंद्रह बीस नहीं, 1000 से ज्यादा भगवत गीता आज संसार में उपलब्ध है। तो अब कंफ्यूज कौन सी भगवत गीता पढ़ी जाए। तो कुछ लोग कह सकते हैं इतनी सारी भगवत गीता कैसे? भगवत गीता मूल जो है 700 श्लोक संस्कृत में, वे तो भगवान के हैं, भगवान के द्वारा, परंतु उस श्लोक को समझाने वाले बहुत सारे लोग हैं, अपनी अपनी भगवत गीता लिखे हैं। तो प्रभुपाद जी जब भगवत गीता लिख रहे थे उसके पहले 742 भगवत गीता लिखी जा चुकी थी। 742 लोगों ने अपनी कॉमेंट्री भगवत गीता के ऊपर दे चुके थे। 743वीं भगवत गीता प्रभुपाद जी लिख रहे थे तब भक्तों ने कहा प्रभुपाद जी ऑलरेडी सब लोग 742 गीता को लेकर कंफ्यूज हैं, आप एक नई कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रहे हैं? तब प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो आज तक जिन जिन लोगों ने भगवत गीता लिखी है सब लोगों ने अपने मन के अनुसार अपने मन धड़ंग रूप से भगवत गीता लिखी, परंतु मैं जो भगवत गीता लिख रहा हूं वह भगवत गीता एज इट इज लिख रहा हूं, अर्थात भगवान कृष्ण जो कहना चाह रहे हैं उस गीता को मैं लिख रहा हूं, ऐसे तात्पर्य को लिख रहा हूं। और बात भी सही है, गीता में भगवान कहते हैं स एवाय मया तेज्ञ योग प्रोक्त पुरातन भक्तो सिमे सखा चेति रहस्यम हेतु उत्तमम। भगवत गीता के ऊपर कॉमेंट्री वही लिख सकता है जो शुद्ध भक्त है, और वह एकमात्र प्रभुपाद जी है। आप देखिए कई लोगों ने भगवत गीता को लिखा है परंतु सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार लिखा, भगवत गीता के अंत में सार के रूप में लिख दिया, गीता का सार यही है कि ब्राह्मणों को दान देना चाहिए ताकि उनकी बिरादरी वालों को दान मिले। जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने भगवत गीता लिखा, कृष्ण बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, गांधी जी ने भी गीता लिखा, बहुत लोगों ने लिखा अपनी बुद्धि के अनुसार। जैसे मान लो एक मंदिर होता है तो उस मंदिर को देखकर एक भिखारी घूमते घूमते आया तो मंदिर को देखकर सोचता है कि वाह मंदिर है कुछ भोजन पानी मिल जाएगा, ये सोचकर मंदिर में आता है। कोई मुसाफिर बहुत दूर से मुसाफरी करते आया तो वो सोचता है चलो मंदिर है यहां पर रेस्ट करने के लिए स्थान मिल जाएगा, वो भी आता है। कोई सिविल इंजीनियर है वहां घूमते घूमते आया तो सोचता है वाह कितनी सुंदर मजबूत आई है। कोई कलाकार घूमते घूमते आए तो सोचते हैं वाह कितना सुंदर कार्विंग्स है हमारे गोपीनाथ मंदिर में, छोटा 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 सोचते हैं कितना सुंदर वे यह नक्शी काम किया है, कार्विंग्स है। और फिर कोई भक्त वहां से गुजरता है तो सोचता है वाह चलो मंदिर आ गया यहां पर भगवान का दर्शन करेंगे आशीर्वाद देंगे। तो ये 4-5 लोग मंदिर में आए हैं तो मंदिर में आने का वास्तविक उद्देश्य कौन जान पाया? भक्त। मंदिर इसलिए, मंदिर भिखारी को भोजन कराने के लिए नहीं बना है, यद्यपि होता है भोजन परंतु मंदिर का वास्तविक उद्देश्य भोजन कराना नहीं, मंदिर का वास्तविक उद्देश्य मजबूताई नहीं है, मंदिर का वास्तविक उद्देश्य सब लोगों को सुलाना नहीं है, मंदिर का वास्तविक उद्देश्य भगवान का दर्शन कराना है और वह मात्र भक्त ही जान सकता है। वैसे भगवान जो कहना चाहते हैं वे मात्र भक्त समझ सकते हैं, ये पॉलिटिशियन ये ब्राह्मण तथाकथित ये लोग नहीं जान सकते। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो भगवद गीता लिखी है वही बेस्ट और वही श्रेष्ठ है। प्रमाण तुरंत आप कहोगे प्रमाण दीजिए, प्रमाण यही है कि भगवद गीता का सार 18वें अध्याय के 66 नंबर का श्लोक, इसमें भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कृष्ण का कहना अर्जुन को यह है कि हे अर्जुन जो व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी हो अपना सभी छोटे बड़े धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है तो अहम त्वाम मैं उसे सर्व पापेभ्यो सभी पापों से मुक्त कर देता हूं और मोक्ष प्रदान करता हूं। यदि भगवत गीता का अनुवाद ये है तो वह भगवत गीता राइट स्वीकार कर सकते हैं, परंतु प्रभुपाद जी के अलावा अन्य जो जो ने गीता लिखा है, मेरे खुद के पास लगभग 35-40 भगवत गीता है अन्य लोगों की, और मात्र कचरा है और कुछ नहीं है उसमें। मैंने तो परीक्षण करने के लिए, क्योंकि बोलने के लिए कुछ अनुभव भी चाहिए, तो करीबन 30-40 गीता तो मेरे पास है और सब में अलग अलग। एक व्यक्ति ने लिखा है कि भगवान कहते हैं कि माम एकम शरण व्रज, मेरी शरण ग्रहण करो, अर्थात कृष्ण के जो अंदर आत्मा है, कृष्ण के अंदर आत्मा है उसकी शरण ग्रहण करो। अब कृष्ण के अंदर क्या आत्मा, वो तो स्वयं सुपर सोल है, परमात्मा है, उसके अंदर वो शरीर और आत्मा का अंतर नहीं है। तो एक व्यक्ति ने तो यहां लिखा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मम बापू शरणम व्रज, मम बाबा शरणम व्रज। जहां भगवान ने यह कहा कि मेरी शरण में आओ, तो वहां उनका ट्रांसलेशन, अब संस्कृत किसको आता है, हम तो हमारी भाषा देखेंगे, ट्रांसलेशन में लिखा है कि सभी धर्मों को छोड़कर मुझ बाबा के शरण में आ जाओ। जहां पर भगवान ने लिखा मन मनाभो मद भक्तो मद्याजिमाम, वहां पर उन्होंने लिख दिया कि मुझ गुरु का स्मरण करो, मुझ गुरु का ध्यान करो। कब क्या ध्यान करेंगे, खैनी खा रहे हैं ध्यान करेंगे, गुरु भी ऐसे होता है। तो सार ये है, भगवत गीता का वास्तविक उद्देश्य प्रभुपाद जी ने प्रकट किया है, और प्रभुपाद जी के द्वारा भगवत गीता एज इट इज पूर्ण रूप से शुद्ध है, इससे प्राप्त किया गया ज्ञान शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रकार से आज प्रथम सत्र में हम भगवत गीता का वर्णन, भगवत गीता की महिमा को हम सब जाने। भगवत गीता की महिमा असीम, अपार, अपरिसीम है। अब देखिए, इस संसार में तीन सबसे बड़े धर्म है, एक है मुसलमान धर्म, एक है क्रिश्चियन धर्म और एक है हिंदू धर्म। ये तीनों धर्म का आधार उनके धर्म ग्रंथ के ऊपर टिका है। मुसलमान धर्म का आधार कुरान है, क्रिश्चियन धर्म का आधार बाइबल है, हिंदू धर्म का आधार भगवत गीता है। आप ये तीनों धर्म का धर्म ग्रंथ देखिए कौन श्रेष्ठ है, तो आप देखिए कुरान जो है, कुरान लिखने वाले मोहम्मद पैगंबर है, और मोहम्मद पैगंबर कहते हैं कि मैं भगवान, मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, पैगाम लेकर आया हूं, मैं मैसेंजर हूं। तो मोहम्मद पैगंबर ने कुरान लिखा है, परंतु वह अल्लाह नहीं, वह अल्लाह के पैगंबर भक्त है। जीसस क्राइस्ट ने बाइबल लिखा, और वह तो स्वयं अपनी बाइबल में लिखते हैं, आई एम नॉट अ गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का पुत्र हूं। और आप भगवत गीता देखिए, भगवत गीता, अब कुरान लिखने वाले भगवान के भक्त, बाइबल लिखने वाले भगवान के पुत्र, परंतु भगवत गीता उस कुरुक्षेत्र के भूमि में खड़े खड़े कहते अहम सर्वस्य प्रभो, मैं ही सबका ईश्वर हूं, मैं ही सबका भगवान हूं। यह भगवत गीता भगवान के द्वारा बोली गई है, यह है भगवत गीता की महिमा। साक्षात यस्मरेत स्वयं पद्मनाभस्य, साक्षात भगवान के मुख से निकली हुई गीता है। आप देखिए, आप गंगा नदी को जानते हैं, आज तो कुंभ मेला लगा है हरिद्वार में, लाखों लोग आप टीवी में देखते होंगे, और उसमें शाही स्नान था पिछले दिनों में, करोड़ों लोग। गंगा नदी तीनों लोक को पवित्र करती है, भगवान के धाम से चलती है ब्रह्मलोक से, ब्रह्मलोक से शिवजी की जटा पर, शिवजी की जटा से गंगोत्री, गंगोत्री से हरिद्वार प्रयाग होते हुए गंगा सागर तक लाखों लोगों को पवित्र करती है। क्यों, आखिर जल है, जल जल में क्या अंतर, हमारे घर पर मटके में भी जल है, बिस्लेरी की बोतल में भी जल है, गंगा में भी जल है, और उसको लेबोरेटरी में लेकर जाएंगे तो H2O ही निकलेगा, चाहे गंगा को लो या बिस्लेरी को लो। तो फिर उस जल में इतना पावर कहां से आया, लाखों लोगों को पवित्र करने का पावर गंगा में कहां से आया, गंगा इतनी पवित्र क्यों है, तो इसका उत्तर है क्योंकि गंगा भगवान के चरणों से स्पर्श होकर निकलती है। अब आप देखिए, गंगा भगवान के चरणों से स्पर्श होकर निकलती है तो लाखों लोगों को पवित्र करती है, जो गीता भगवान से मुख से निकली है वह लोगों को पवित्र करेगी, उसमें क्या संदेह है। गंगा तो भगवान के चरणों से निकली है, परंतु गीता भगवान के मुख से निकली है। आप चिंतित मत हो, आप भले कुंभ में नहीं गए हो, गंगा नहीं गए हो, परंतु गीता रूपी गंगा यहाँ हमारे अपने क्षेत्र में आज से निकल रही है। आप सब लोग इसमें स्नान कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
यद्यपि प्रथम सत्र में मैं गीता और गुरु की महिमा, शिष्य की योग्यता बताता हूँ, लेकिन समय बहुत कम रहा। कल से आप सब लोग जल्दी आ जाइए, बिल्कुल ठीक टाइम से शुरू करेंगे, और क्योंकि बहुत कुछ सुनता और समझने के लायक है। तो आने वाले कल में हम इस गीता को पढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता, गुरु की योग्यता क्वालिफिकेशन, शिष्य की क्वालिफिकेशन और गीता का प्रथम प्रश्न हु एम आई, इसका उत्तर जानेंगे। तो आप सब लोग टाइम से आइए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, गीता में कितने इसमें था, तो इसमें बंद कर दिया। मैं बोल दूं, 701 श्लोक है टोटल। कृष्ण के द्वारा 574, अर्जुन के द्वारा 84, संजय के द्वारा 42 और धृतराष्ट्र के द्वारा 1। 42 धृतराष्ट्र के द्वारा 1, पहला प्रश्न धर्म क्षेत्र वाला। सूर्य के बारे में मैं चौथे दिन बताऊंगा पूरा, सूर्य के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा मैं। और कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? माता जी,
भगवान श्री कृष्ण का राधा के साथ सबके इधर बात होते है, लेकिन रुक्मिणी का नाम क्यों नहीं आता है?
अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न है। यद्यपि आज का विषय नहीं है, लेकिन प्राय कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ, लेकिन मंदिरों में तो राधा के साथ ही वे देखे जाते हैं, ऐसा क्यों? एक बार हमारे गुरु महाराज को ऐसा प्रश्न पूछा था, लंदन या अमेरिका में हजारों लोग बैठे थे, उसमें किसी माता जी ने ही पूछा कि ऐसा क्यों, और आपने तो नम्रता से हम्बल होकर पूछा, उन्होंने तो आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया और 16108 के साथ विवाह किया। माता जी ने कहा, हमारे गुरु महाराज ने कहा, आपको क्या प्रॉब्लम है डायरेक्ट, क्योंकि उनका भी खिसक गया। भगवान के ऊपर यदि कोई दोषारोपण करता है तो फिर हनुमान जी की तरह। तो नहीं, आप जवाब दो। तो हमारे गुरु महाराज, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके घर से कुछ पैसा लेकर जाते हैं उनका घर चलाने के लिए? तब तो उसके पति खड़े हो गए, नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप ठीक ठीक से बताओ, हमारी पत्नी का जवाब दो। तो महाराज ने कहा, तो क्या वो 16108 आपकी बहन लगती है? हैं? नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम है? देखिए, 16108 को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 16108 के पिताओं को प्रॉब्लम नहीं है, और जामवती को जामवन जी ने दिया कि आप विवाह करो, सत्राजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा को दिया, और ये सब ने, वो उनके माता पिता को प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम नहीं है, कृष्ण को उनकी सेवा करने में, उनको घर पे रखने में प्रॉब्लम नहीं है, सुखदेव गोस्वामी को प्रॉब्लम नहीं है, परीक्षित को प्रॉब्लम नहीं है, नैमिषारण्य के 88,000 ऋषि मुनि को प्रॉब्लम नहीं है, सुध गोस्वामी को प्रॉब्लम नहीं है, वेद व्यास को प्रॉब्लम नहीं है, तुमको क्या प्रॉब्लम है? खैर, ये तो जस्ट ऐसे ही तर्क हो गया था, लेकिन तत्व से यदि देखा जाए तो आपका प्रश्न का उत्तर यह है, श्रीमती राधा रानी जो है वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। ये जो यहां पर संसार में पृथ्वी पर द्वापर युग में लीला हुई, ये तो अनित्य लीला है, भगवान के धाम में नित्य लीला चलती है, गोलोक धाम में, और नित्य लीला में कृष्ण और राधा दोनों पति पत्नी है। परंतु भगवान तो भोगता है, सभी रसों के भोगता है, तो भगवान को सभी टेस्ट चाहिए। भगवान के धाम में सब टेस्ट हैं, परंतु एक टेस्ट नहीं है, और वह टेस्ट कौन सा है? छुप छुप के मिलने का, जिसे विप्रलंब रस कहते हैं। ये सब बहुत हायर बातें हैं, भक्ति सामृत सिंधु पर किया भाव। अब वो टेस्ट तो कुछ लोगों ने किया होगा, जैसे सत्य आपके हृदय पे हाथ रखकर बताओ, जो आनंद कॉलेज में किसी लड़की के साथ घूमने में आता है, वह आनंद पत्नी के साथ घूमने में आता है? घर पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है कि देखो किसी लड़की से बात नहीं करना है, लड़की के वहां से रिस्ट्रिक्शन होता है और छुप छुप के फोन में बात करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, डर डर के हृदय में डर होता है, है? उसमें जो आनंद है वो पत्नी के साथ आनंद नहीं है। तो भगवान भी देखते हैं कि ये साले कॉलेज में सब लोग घूमते रहते हैं और मैं बस ऐसे ही बैठा रहूं पत्नी के साथ, क्योंकि वहां तो राधा और कृष्ण पति पत्नी है, तो वहां पर पति पत्नी का सुख है, परंतु ऐसा छुप छुप के घूमने फिरने का आनंद विप्रलंब रस नहीं है। तब भगवान यह रस लेने के लिए राधा को कहीं और जन्म कराया, स्वयं कहीं और जन्म लिए, यहां तक राधा का विवाह भी कहीं और करा दिया, स्वयं कहीं और फिर छुप छुप के मिलने का आनंद लेते थे। तो ये भगवान आनंद देने के लिए ले रहे, वास्तव में राधा और कृष्ण पति पत्नी है। इसका उत्तर बहुत बड़ा हो सकता है, इसके ऊपर पूरा प्रवचन हो सकता है, लेकिन संक्षिप्त में आप इतना ही समझिए, ठीक है? सेटिस्फेक्शन है आपको? ठीक है, और कोई प्रश्न है? ठीक है, अब समय हो चुका है ना प्रभु जी कि चलेगा? ठीक है, एनी क्वेश्चन? नहीं है। आपके क्वेश्चन हो तो आप अभी भी, आज का दिन है, कल पूछ सकते हैं, और यदि प्रश्न पूछने में कुछ संकोच या शर्म आती है तो आप कागज में लिखकर मुझे दे सकते हैं, ठीक है? हरे कृष्ण, आप सबका धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल कर आए। अनाउंसमेंट कुछ हो तो आप कर सकते हैं।